नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं रफी साझा मंच मोबाइल वाणी से मेरे सीधे फोन लाइन पे जुड़े हैं जनरल सेक्रेटरी CITU के अनिल जी अलवर से निमराना में। वहां पर स्ट्राइक चल रही है और इन्हीं सब मुद्दों पे हम उन पे बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा होगा कि जो राजस्थान में जो वेज कोड सरकार चेंज कर रही है, इन्हीं सब मुद्दों पे सीधे बात करेंगे। स्वागत है अनिल जी आपका। क्या हुआ है और ये स्ट्राइक किन वजहों से चल रही है और कितने श्रमिक साथी इसमें शामिल हैं?
सबसे पहले तो मैं आप सभी का क्रांतिकारी सलाम। साथियों, ये स्ट्राइक पिछले 7 महीनों से चल रही है। अपने निमराना रुचि बियर के वर्कर वहां पे पिछले 7 महीनों से, कोरोना काल के दौरान भी वो वहीं पे लगातार धरने पे डटे हुए हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान सरकार ने, श्रम विभाग ने किसी भी प्रकार की कोई पहल करके रुचि लेने का इंटरेस्ट नहीं किया और न ही इस मामले को किसी भी तरह सॉर्ट आउट करने का कोई रुचि ली है। और कंपनी ने बगैर कोई नोटिस दिए एक साथ लगभग 350-400 वर्करों को कॉन्ट्रैक्ट समेत बाहर कर दिया है। उसके लिए अभी आगे की जो भी रणनीति CITU बनाएगी उसके लिए हम अगुवाई कर रहे हैं। जो आंदोलन वगैरह तय होगा वो कर रहे हैं।
क्या काम होता था फैक्ट्री में और जो अभी वेज कोड राजस्थान गवर्नमेंट लेके आ रही है वो ये वेज कोड कितना प्रभावित करेगा, वो कानून ऐसे मजदूरों को कितना प्रभावित करेगा, इस बारे में क्या कहना
है? अरे, ये कंपनी जो अपनी रुचि बियर थी, ये बियर बनाती थी शराब, और इसमें 350-400 वर्कर काम करते थे। ठीक है, और प्लांट ने अचानक से मतलब 2 दिन की छुट्टियां रही। ठीक है, और छुट्टियों के बाद जैसे ही वर्कर गेट पे गए, ठीक है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें गेट में एंट्री नहीं करने दिया गया। ठीक है, और उन्हें गेट के बाहर रोक दिया गया और मालिक ने बोल दिया कि भाई ये कंपनी बंद हो गई है, घाटे में चल रही है, इस वजह से मैं इस कंपनी को चलाने में सक्षम नहीं।
तो ये जो श्रम कानून जो है राजस्थान सरकार लेके आ रही है और जो है केंद्र सरकार जो 44 लेबर कोड को उसने जो है 4 लेबर कोड में जो है सीमित कर दिया है, वो कितना प्रभावित करने वाला है एक आम मजदूर को?
देखिए सर, ये मान के चलो कि जो ये कानून सरकार लेके आ रही है ये मजदूर को एक प्रकार से बदवा मजदूर की तरफ ले जा रही है, मजदूर के अधिकारों का हनन हो रहा। ठीक, कहीं भी कोई भी मजदूर संगठन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो कोड लेके क्या रहे हैं इनमें मजदूरों को किसी भी प्रकार से संगठन वगैरह आदि करने का कोई राइट नहीं। आपने देखा होगा कि अभी जो अपने सरकारी कंपनियां निजीकरण में दी है उन्होंने भी अभी एक कानून पास किया गया है कि अगर वहां पे अदर बाहर से कोई आएगा तो उन पे भी जुर्माना लगेगा, अंदर से अगर कोई अध्यक्ष वगैरह कोई हड़ताल वगैरह पे जाएगा तो जुर्माना लगेगा। वो इस प्रकार के कानून लेके आ रहे हैं ताकि मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सके और सिर्फ पूंजीपतियों का गुलाम बन के कार्य करे।
यूनियन को कितना कमजोर किया जा रहा है और खास करके राजस्थान जो अधिनियम लेके आ रही है, एक मुखौटा तैयार किया 2021 का जिसको वो पास कराने के लिए वो ड्राफ्ट प्रस्तुत है, उसमें आपकी भी कमेटी के लोग अभी उसमें समिति में, हालांकि उसमें अभी मतभेद चल रहा है, उसमें लेके क्या कहना है? क्योंकि ये राजस्थान का क्षेत्र है, निमराना अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है ये, और उसमें किस तरीके के प्रभाव राज्य स्तर पर प्रभावित होने वाले हैं? जो राज्य स्तर पे आपका कानून है, जो राज्य को पावर दिया गया है, बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तो राजस्थान किस तरीके से इससे बचने की कोशिश करेगा या आपका अगला कदम क्या होगा यूनियन?
सर, अगर राजस्थान में श्रम मंत्री जी से इस मैटर में हमारे जो CITU के सीनियर लीडर थे उनकी मीटिंग भी हुई थी। ठीक है, और उन्होंने इस कानून के लिए पहले तो मना किया था लेकिन अब लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से इसे लागू करना चाह रही है। तो इसमें मजदूरों का अगर ये कानून लागू होता है तो CITU और जो भी ट्रेड यूनियन है सभी बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे राजस्थान में और इसके लिए संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे।
तो ये जो एक कानून है जो राज्य स्तर पर अभी पारित करने की सरकार बात कर रही है, ये कितना अलग होगा राजस्थान का वेज कोड केंद्र सरकार के कानून से, श्रम कानून से कितना अलग होगा और ये किस तरीके से एक मजदूर को प्रभावित करेगा?
देखिए सर, राजस्थान में जो इंडस्ट एरिया है नीमराणा के अंदर, वो ये मान के चलो कि यहाँ पे लगभग लगभग जो इंडियन जोन कंपनी है उनमें 12 घंटे के मतलब 8 से 10 हजार के बीच में वर्कर को मिलते हैं। जापानी जोन में 12 से 14 हजार के समथिंग मिलते हैं। और अगर ये कानून लेके आते हैं और इनमें अगर 12 घंटा वगैरह की ड्यूटी होती है और मजदूर को अगर उसके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मजदूर के साथ शोषण होगा और उसके लिए मजदूर जागरूक होकर आंदोलन की तैयारी करेगा और CITU उस आंदोलन में भागीदारी निभाएगी।
तो अभी जैसे लेके आ रहे हैं आपके राजस्थान में, जो हमने मोटी मोटी जानकारी मिल रही है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं देंगे, अगर एम्प्लॉयर चाहेगा तो 50% सैलरी कट कर सकता है, लेकिन उसको एक अधिकारी को जो है सूचित करना पड़ेगा कि वो उसका पैसा काट रहा है, अगर उसने कुछ पैसे एडवांस में वर्कर को दिए हैं। तो इस तरीके के ये जो कानून ला रहे हैं, तो राजस्थान में इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूरों पे जो पड़ने वाला है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है और मजदूर साथी कितना तैयार हैं इसके लिए?
देखिए, अभी से अच्छी तो ये है कि मजदूरों को इस बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं हुई है। ठीक है, हम मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ इन सभी कोडों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मजदूरों को जागरूक और संगठित करके और इसके लिए कोई आंदोलन की तैयारी करें।
हाँ, हमारी बात लगातार हो रही है कुछ मजदूर साथियों से नीमराना में और ये भिवाड़ी वाले एरिया में, तो वो कह रहे हैं इसकी जानकारी कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी तकनीकी भाषा का ड्राफ्ट में उपयोग किया जाता है कि एक आम इंसान को, आम मजदूर को इस भाषा से पता न चले कि आखिर उस सरकार चाहती क्या है इससे। तो उसको किस तरीके से CITU की या ट्रेड यूनियन की अगली रणनीति होगी कि उनको उन्हीं की भाषा में आसानी से उनको इस चीज की जानकारी दी जाए, क्योंकि उनकी भी उनको जानकारी अगर नहीं मिल रही है तो ट्रेड यूनियन अकेले आंदोलन कैसे खड़ा कर पाएगी? तो क्या रणनीति चल रही है इसके लिए, क्या बैठकें आप लोगों की हो रही है, कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
सर, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, मैंने आपसे कहा भी था कि सोशल मीडिया के माध्यम भी आजकल हम इस चीज को लेकर के जागरूक कर रहे हैं मजदूरों को। ठीक है, और मजदूरों के बीच में भी जा रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में समझा भी रहे हैं और ये जो 4 कोड लेके क्या ये इनके बारे में भी मजदूरों को बता रहे हैं ताकि इसके लिए दूर जागरूक हो सके। ठीक है, और वो ट्रेड यूनियन से जुड़े और कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान में हम लड़ सके।
किस तरीके से केंद्र सरकार या राज्य सरकार पे ये श्रम कानून थोपने की कोशिश कर रही है, और राजस्थान सरकार क्या इन कानूनों में कुछ बदलाव करेगी कि केंद्र सरकार की जो रणनीतियां हैं श्रम कानूनों को लेके वो पूरी तरह से राजस्थान में जो है इम्प्लीमेंट ना हो पाए और मजदूरों को उनके अधिकार बरकरार रहें? इसके लिए क्या है, क्या केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों में अंतर होगा?
सर, राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र में से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ उनका अत्याचार कर रही है। क्योंकि कानून जो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने जो पारित किया है वो कानून पहले ही राजस्थान में वसुंधरा सरकार के दौरान ही तैयार हो चुके थे। वो उसके लिए तो बाद में एक फाइल मेटिक तैयार किया गया है उसको लागू करने के लिए। उस टाइम अशोक गहलोत की सरकार विपक्ष में थी तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया। आज बीजेपी विपक्ष में है तो शायद हो सकता है वो इसका विरोध ना करे, लेकिन ये एक नागनाथ है तो एक सापनाथ है, इन दोनों की रली मिली सरकारें हैं और रली मिली राजनीति है। ये कहीं ना कहीं दोनों सरकारें उद्योगपतियों के लिए काम करती है।
अभी क्या रणनीति है जो आपकी स्ट्राइक चल रही है, और इसमें अगला आपका क्या कदम है, और किस तरीके से, क्योंकि कानून अब जो है पूरा आप बता रहे हैं कि वो उद्योगपतियों के फेवर में है, तो अब लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है, खास करके राजस्थान में नीमराना?
जी, राजस्थान में तो लड़ाई अब भी बहुत ही ज्यादा कठिन है और आने वाले कल में तो इससे भी ज्यादा कठिन होगी। क्योंकि मजदूरों के और प्रशासन, मतलब क्या होता है कि सर, जो सरकार और प्रशासन मजदूर और कंपनी मैनेजमेंट के बीच में रहते हैं और प्रशासन और सरकार वो पूर्णतः वर्करों का साथ ना देके कंपनी का साथ देती है, पहले भी देती आई है अब भी दे रही है। तो उसके लिए कोई बड़ा आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा, सभी ट्रेड यूनियनों को एक मंच पे आना पड़ेगा, अन्यथा हमने ऐसा नहीं किया और इस प्रकार की कोई अगुवाई नहीं की तो मजदूरों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम सभी मजदूरों को जागरूक करके और सभी ट्रेड यूनियनों को एक मंच पे ला करके एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे ताकि जिससे सरकार पे और प्रशासन पे दबाव बनाया जा सके और मजदूरों को राहत मिल सके।
एक इसमें एक मुख्य बात कही है कि नियोक्ता द्वारा पे स्लिप देना अनिवार्य होगा, तो कुछ मजदूर साथियों से बात होती है, वो ये कह रहे हैं कि पे स्लिप तो पहले भी नहीं दी जाती थी और कुछ जगह दी भी जाती थी, तो पे स्लिप को लेके ये जो स्पेशल इसमें शामिल किया जा रहा है, आज भी लोगों के पास पे स्लिप नहीं है। कुछ मजदूर साथी कहते हैं हमें आज तक पे स्लिप नहीं मिली, ना उनके पास ज्वाइनिंग लेटर है, तो इसको लेके क्या रणनीति है ट्रेड यूनियन की, कैसे उनके अधिकार, अगर अधिकार की बात करते हैं तो मजदूर फैक्ट्री से निकाल दिए जाते हैं, ये बात चल रही है, बताते हैं कि अधिकार की बात करने पर निकालने के भी निर्देश हैं कंपनी से, तो उस स्थिति में अब मजदूरों के साथ इस तरीके की रणनीति तैयार करना आपके लिए अभी कितना बड़ा चैलेंज है, खास करके नीमराना क्षेत्र में। कल नीमराना के लिए जो बात हुई है, जो उसमें जापान जोन है, कोरियाई जोन है, उसके विरुद्ध भी आप सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं कि भारत में अलग अलग जोन बनाने की क्या आवश्यकता है, तो इन सबको लेके क्या रणनीति है?
देखिए सर, ये वास्तविक सच्चाई है कि नीमराना के अंदर इंडियन जोन में तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, ये मान के चलो कि 90% ऐसी कंपनियां इंडियन जोन में जिनमें पे स्लिप वगैरह नहीं दी जाती, और 10% तो ऐसी कंपनियां भी होंगी जो छोटे प्लांट है, ठीक है, 100, 150, 40, 30 वर्कर काम करते हैं जिनमें, उनमें ESI और PF तक की भी सुविधा नहीं दी जा रही है मजदूरों, ठीक है, और उसके लिए हमने खुद मतलब वर्करों से बात भी की है, उनके भी लिए हैं कि भाई आपको क्या सुविधा मिलती है क्या नहीं मिलती है, तो ये चीजें काफी मजदूरों से निकल के भी आई है कि सर हमें इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है, मतलब सरकार ने जो पहले अधिकार दे रखे थे कहीं ना कहीं उद्योगपति हुए अधिकार भी उन्हें पूर्णतः नहीं दे रहे हैं, और नीमराना के अंदर तो ये मान के चलो कि संघर्ष बहुत ही कठिन है, और लेकिन कठिन संघर्ष के साथ भी मजदूरों को जागरूक किया जाएगा, काफी अपने कंपनियों में यहाँ पे मजदूरों का आंदोलन चले है, डाइकन में, टोयोटा में, रुचि बियर में, सियोन अल्ट्रावेयर में, तो कहीं ना कहीं हम सभी यूनियनों के जो साथी हैं वो एक शॉप फ्लोर पे आके एक बड़ा संगठन बनाएंगे और नीमराना के लिए एक क्षेत्रीय इकाई यूनियन भी तैयार करेंगे और उसके बाद कोई आगे की रणनीति तय करेंगे।
कितना सात मजदूरों का मिलने की उम्मीद है, खास करके ट्रेड यूनियनों को, क्योंकि स्थितियां अभी नाजुक है, मजदूरों को काम में झोंक दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में मजदूर किसको जो है प्राथमिकता देने वाला है, तरजीह किसको देने वाला है कि वो ट्रेड यूनियन के तले के नीचे आता है या उसकी मजबूरी उसको जो है उद्योगपतियों की तरफ और फैक्ट्रियों में और पेट पालने के लिए मजबूर करती है, क्या लगता है?
सर कहीं कहीं मजदूर अपना पेट पालने के लिए उद्योगपतियों की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा है आज के दौर में, प्रेजेंट के दौर में, लेकिन अगर जब शोषण हद से ज्यादा होगा, ठीक है, तो निश्चिंत है कि मजदूर जागेगा और खड़ा होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो श्रोताओं, अनिल जी बता रहे थे किस तरीके की तैयारी चल रही है और किस तरीके से सरकार ऐसे कानून बना रही है जिससे आने वाले समय में मजदूर की स्थिति और बदतर होती जाएगी। इन्हीं सब खबरों के साथ आप बने रहें साझा मंच पर और सुनते रहें साझा मंच। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।